آخر اس درد کی دوا کیا ہے؟
دل کلیوں کی کلپنا، ایشور کا انسان کو ایک تحفہ، وقت روپی امرت سے ہماری دھنیوں میں جیون دھارا کو پرواہت کرنے والا ایک ادبھت یمتر، وہ یمتر جو ہمارے پیدا ہونے سے پہلے سے لے کر ہماری آخری سانس تک چلتے رہنے میں سکشم ہے۔ یہ ہر منٹ میں قریباً 80 بار، ایک دن میں لگ بھگ 1,00,000 بار، اور ایک ورش میں 4,20,00,000 بار تک دھڑکتا ہے۔ کنتو آج یہی جیون داتا ہمارے لیے چنتا، بیماری اور موت کا سوچک بنتا جا رہا ہے۔
دل کی بیماری جو پہلے تھا، پہلے کم تھا لیکن اب زیادہ ہے۔
آج کل دل کی بیماریاں بہت بڑھ رہی ہیں،
ہارٹ ڈیزیز پوزیٹیولی بڑھ رہا ہے، یہ مینلی مڈل کلاس فیملی میں بڑھ رہا ہے۔
ہارٹ ڈیزیز بہت تیزی سے بڑھتا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے لوگوں کی زندگی میں، نجی زندگی میں بہت زیادہ پرابلمز آ گئی ہیں۔ اس کا ایک کارن جو یہ ہے کہ آج ٹینشنز بہت بڑھ گئی ہیں، اسٹریس بڑھ گیا ہے۔
اس کا مین کارن ہے یہ ماڈرن لائف اسٹائل،
لوگ طرح طرح کے دھومپان وغیرہ کرتے ہیں، سگریٹ سگریٹ پیتے ہیں،
پولوشنز بھی ہے، پولوشن جو انوائرمنٹ جو پولوشن ہے،
فرجوسوں سے ہمارے کو دل کی بیماری کا زیادہ ہم کو اچھا لگتا ہے۔
جو فوڈ ہیبٹس وغیرہ ہیں وہ بھی ایک مین کارن ہے۔
فاسٹ فوڈ میں لوگ زیادہ دھیان دینے لگے ہیں، پیورٹیز تو رہی نہیں ہے، تو آرٹیفیشل جیسے برگرز، پیزا لوگ بہت کھاتے ہیں، جا رہے ہیں آرٹیفیشل فوڈ میں، زیادہ دھیان جاتا جا رہا ہے لوگوں کا، جو ہمارے شریر کے لیے بہت زیادہ نقصان دائک ہے۔
جو ہردے دھمنی روگ ہے وہ پورے وشو میں اور خاص طور بھارت میں بہت ہی وستارت روپ سے پھیل رہا ہے، اور اس کا جو پرمکھ کارن ہے وہ رہن سہن کا طریقہ۔
ہردے دھمنی روگ جسے ہم کارنری آرٹری ڈیزیز اور عام لوگوں کے لیے انجائنا اور مایوکارڈیل انفارکشن کے نام سے جانا جاتا ہے، کافی حد سے بڑھ گیا ہے۔ ایک تہائی سے زیادہ لوگ اس بیماری سے مرتے ہیں۔
جیسا کہ ہمیں پتا ہے 30 سال پہلے یا 40 سال پہلے اس کا انسیڈنس بھارت میں بہت کم تھا، 3% اور 4%، جو کہ آج بڑھ کے 10% یا 12% ہو گیا ہے۔ اور رورل ایریا میں جہاں پر لوگوں کو کم مانسک تناؤ ہے وہاں 2% سے 4% بڑھ گیا ہے۔
ہندوستان کی آبادی آپ کو معلوم ہے 100 کروڑ ہے، اور اگر 100 کروڑ کو کیول اس نمبر سے دیکھا جائے بدل کے، تو 4-5 کروڑ لوگوں کو یہ بیماری اوسطن روپ سے ہے۔
ایسا کہنے میں آتا ہے کہ وشو کے جتنے اس روگ کے پیشنٹس ہیں اس کے 60% ہماری کنٹری میں ہوں گے، تو یہ ہمارے لیے بہت گمبھیر استھتی ہے۔ ہمارے دیش میں ہر ورش قریب 40 سے 45 لاکھ ہارٹ اٹیک کے کیسز ہوتے ہیں، اور دکھ کی بات یہ ہے کہ ان میں سے 1/4 کی مرتیو اسپتال پہنچنے کے پہلے ہی ہو جاتی ہے، اور بہت سارے پیشنٹس اب ہمارے دیش میں پشچم دیشوں کے کمپیریزن میں ان کی عمر کم ہوتی ہے، 10 سال ایوریج عمر کم ہے۔
کہ 30 سال پہلے جب میں جونیئر ڈاکٹر کے روپ میں آئی سی سی میں کام کرتا تھا، تو آئی سی سی میں جو مریض آتے تھے ان کا عمر 50 اور 60 سال کے بیچ میں ہوتا تھا، عورتوں کی سنکھیا آلموسٹ نگن کے برابر تھی۔ ایک سال میں اگر 1,000 مریض بھرتی ہوئے تو مشکل سے 100 مریض فیمل پیشنٹ ہوتی تھی۔ آج چینج ہو گیا ہے، بدلاؤ آ گیا ہے۔ جو مرد لوگ آتے ہیں ان کی عمر 20 اور 40 سال کے بیچ میں بھی رہتی ہے، اور آلموسٹ آدھے لوگ اس عمر کے ہوتے ہیں۔ عورتوں کی سنکھیا اتنی بڑھ گئی ہے کہ 10 بیڈ کے آئی سی سی میں ہمیشہ 2 یا 3 عورتیں پیشنٹ ہوتی ہیں۔
میرا نام دھنیش رویلا ہے، میرے ساتھ میری ماتا جی ہیں کتاب و دیوی، جن کی عمر 67 ورش ہے۔
میرا کتاب و دیوی نام دلی میں رہ رہے ہیں، تو میرا گھبراہٹ ہو جاتی زیادہ، چلنے میں سانس چڑھتا۔
ورش 2001 میں انہیں پہلی بار ایسا محسوس ہوا کہ چلنے میں دقت ہوتی ہے، سانس پھولتا ہے، سیڑھی چلنے میں سانس پھولتا ہے، تو 2003 ورش تک کوئی وشیش دھیان نہیں دیا گیا، ہومیوپیتھک یا چھوٹی موٹی دوائیوں سے کام چلتا رہا اور اس طرف تو دھیان ہی نہیں گیا تھا. فروری 2003 میں ٹھیک سے ٹیسٹ کرانے پر پایا گیا کہ ان کو ہرد روگ کی بیماری ہے اور دو آرٹریز ایوریج 83% بلاکیج تھی.
تو اینجیوگرافی کے لیے میں نے گئی تو اس نے اینجیوگرافی کری, اس میں آ گیا یہاں کا آ گیا تو بائی پاس سرجری لکھ دی. تو میں گھبرا گئی, ڈر گئی, میں کہا میں پھر آؤں گی, ابھی تو میں جاؤں گی, ابھی نہیں آؤں کرواؤں گی.
میرا نام پریش دوے ہے, اندھیری سے آیا ہوں, ایج میری 38 ہے اور میں انشورنس سیکٹر میں کام کرتا ہوں. میرے کو فرسٹ اٹیک 21 دسمبر کو آیا تھا 2001 میں. اس کے بعد within 6 منتھس 17 مئی کو دوسرا اٹیک آیا تھا.
میں انورادھا سنگھل ہوں. 2001 میں میرے کو اٹیک آیا دسمبر میں, دوسرے دن صبح میری اینجیوگرافی کرائی اور اس میں بلاکیج تھی, تو ساتھ کے ساتھ ہی اینجیو پلاسٹک کر دی, جو کہ میری 3 بار ہوئی اینجیو پلاسٹک. پھر مطلب ساری وہی 2 سٹنٹ پڑے.
ایسا کیوں ہو رہا ہے یہ تو شاید میں ایک روپ سے نہیں بتا سکتا ہوں, لیکن ایسا ہو رہا ہے یہ صحیح ہے.
آج میں آپ بتا رہا ہوں اتنی زیادہ ینگ ایج میں یہ کارڈیو واسکولر ڈیزیز ہو رہی ہے, ڈائبٹیز ہو رہی ہے, ہائپر ٹینشن ہو رہے ہیں, مینٹل ایلیمنٹ ہو رہے ہیں, بیکاز کم سے کم انڈیا کے اندر سوسائٹی میں تناؤ اتنا زیادہ ہے, اس کی وجہ سے ہم اپنے لوگوں کو مار رہے ہیں, بچوں کو, آنے والی جنریشن کو جلدی سے جلدی موت کی طرف ڈھکیل رہے ہیں.
جہاں تک ہم ان کو اگر ہم کنونشنل اور نان کنونشنل رسک فیکٹرز کے ٹرم میں بات کریں, تو کنونشنل رسک فیکٹرز میں آتا ہے یا تو آپ کی فیملی ہسٹری ہے, یا پھر آپ کو بلڈ پریشر کی بیماری ہے, یا ڈائبٹیز کی بیماری ہے, یا آپ اسموکنگ کرتے ہیں, الکوہلزم ہے, یا آپ کو زیادہ سٹریس اینڈ سٹرین ہے.
آج ہم ہارٹ اٹیک کے جو رسک فیکٹر کہتے ہیں, جس میں بلڈ پریشر, ڈائبٹیز, موٹاپا اور ایکسرسائز کی کمی اور زیادہ کولیسٹرال, یہ تو ہم باتیں کرتے ہیں, لیکن اس سے کیول 2 یا 3 ٹائم زیادہ ہارٹ اٹیک آنے کے چانسز ہوتے ہیں. لیکن ابھی یہ دیکھا گیا ہے کہ جو بہت سارے الگ رسک فیکٹرز ہیں, جیسے دیہ ابھیمان, جلسی, ایک دوسرے کی کمپیئر کرنا اور مانسک تناؤ, جس کے بارے میں کوئی بھی ویکتی, کوئی بھی ڈاکٹر پیشنٹس کو صلاح نہیں دیتا یا اسے پتا نہیں رہتا کہ اس کے بارے میں کیا صلاح دی جائے, اور یہ آج ایک میجر رسک فیکٹر بن گیا ہے ہارٹ ڈیسیز آنے کا.
جو نان کنونشنل رسک فیکٹرز ہیں ان میں اتیدک غصہ کرنا, غصہ ایکسپریسڈ ہو یا دبا کے رکھا ہو, پھر ہوسٹیلیٹی, ریونج فلنس, دوسروں سے بدلہ لینے کی بھاونا, دوسروں کے پرتی نفرت, آئسولیشن, جب ہم دوسروں سے کٹ کے رہتے ہیں ہم, جب یا پھر ہمارے پریوار میں ہمیں سپورٹ نہیں ملتا ہے, جب ہم اکیلا محسوس کرتے ہیں, تب یہ ہردے روگ ہونے کی سمبھاونا بڑھ جاتی ہے.
ان کے ہردے روگ کے وشیش ایک کارن بھے, ڈر اور ساماجک پرتشٹھا پوری نہ ملنے کے کارن, یہ ایک کارن ہے ان کے ہردے روگ کا. آج میں گھی کا کام کیا کہ ورش 2003 اپریل میں, جیسے میں نے بتایا مجھ سے انہیں کچھ وشیش سنیہ تھا, میری اکلوتی 16 ورش پتری کا ندھن ہونے کے کارن اور اس کے وپرانت میرے پتنی کے سمبند وچھید ہونے کے کارن انہیں اور آگھات پہنچا اور ان کے دل پر اور کٹھارا گھات ہوا.
میرا نام ایم پی اگنی ہوتری ہے, میں چنڈی گڑھ سے ہوں, میں چنڈی گڑھ اسٹیٹ کوپر بینک میں جنرل مینیجر تھا. تو لائف اسٹائل میرا جیسے بہت ہی برا اس کو کہہ سکتے ہیں, تو ڈاکٹر صاحب تو من میں سوچ رہے تھے کہ اینیمل انسٹنکٹ سارے ہیں, سبھی برائیاں ہیں. دیکھ میں ڈیلی کرتا تھا کھانا, آلموسٹ ایک مہینے میں 28 دن باہر کھاتا تھا, کلبز میں زیادہ کھانا ہوتا تھا اور لیٹ آنا, لیٹ کھانا, تو ایسی ساری جو برائیاں جیسے ہوتی ہیں سب ٹھیک ہوئے. میرے کو سیویئر پین ان بوتھ دا آرمز اینڈ دی چیسٹ بہت زیادہ ہوا. 2001 میں میرے کو ہارٹ اٹیک ہوا, 25 جولائی 2001 میں ہوا تھا یہ. تو 27 کو انہوں نے میرا اینجیوگرافی کیا, تو اس میں قریب 8 بلاکیجز پائی گئی, جس میں 99% تھی, باقی 90% اور 80% ایسے 8 بلاکیجز تھی. تو انہوں نے کہا کہ آپ کی تو امیڈیٹ سی اے بی جی بائی پاس سرجری کریں گے.
اور آج اگر ہم بات کریں
कि कितने लोगों का हम इलाज कर पा रहे हैं नई तकनीक से, जैसे कि बाईपास सर्जरी हुआ या एंजियोप्लास्टी हुआ। पिछले साल 50,000 लोग की एंजियोप्लास्टी की गई और उतने ही लोगों की बाईपास सर्जरी की। कहने का मतलब यह है कि 1,00,000 लोगों का इलाज किया गया और 4 से 5 करोड़ लोगों को यह बीमारी है। इससे यह साफ जाहिर होता है कि जो इलाज हम कर रहे हैं और जिस रफ्तार से बीमारी बढ़ रही है वो किसी भी रूप में इसका उत्तर नहीं दे सकती है। मेरा ऐसा मानना है कि जब तक हम जड़ में नहीं जाएंगे तब तक ऊपर के पत्तियों को कुछ नहीं कर सकते।
मेरा नाम असल ग्रोथ है, मैं अभी 59 ईयर्स मेरी एज है और मैं पीडब्ल्यूडी में अभी सेकेंडरी इंजीनियर के पोस्ट पर जयपुर में काम कर रहा हूँ। और 98 में मुझे हार्ट की थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई थी और इमीडिएटली डिटेक्ट हो गई और मैंने एस्कॉर्ट में बाईपास सर्जरी कराई। तीनों वेन में मेरे ब्लॉक थे जिसमें एक में करीब 90-80 और करीब 100% करीब करीब इमीडिएटली, और उसके कराने के बाद में मैं 5 साल बाद में 2003 में मुझे फिर थोड़ी सी तकलीफ महसूस हुई और उसके साथ ही फिर जब मैंने वापस एंजियोग्राफी कराई तो मुझे पता लगा कि 3 में से 1 वेन ब्लॉक हो गई है, 100% ब्लॉक थी। तो इमीडिएटली उसको फिर मैंने वो कराया। उसके बाद में 2004 तक मेरे 1 साल तो ठीक रहा लेकिन उसके बाद फिर मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम होने लगी। प्रॉब्लम होने के बाद जब मैंने वापस एंजियोग्राफी कराई तो उन्होंने कहा 1-2 ब्लॉक और इसमें बढ़ रहे हैं और उन्होंने कहा इसका कोई अभी हमारे पास इसका कोई इलाज इमीडिएटली कुछ भी नहीं है, आप मेडिसिन पे अपना गुजारा करें।
आज हमारा मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन जो है जो इस कि जो ट्रीटमेंट प्रणाली है जो कॉस्टली है वो अफोर्ड नहीं कर सकता, इसलिए आज का जो मनुष्य है वो लाचार है, मजबूर है, दुखी है।
मेरा नाम जीजी रामदेव, मैं महाराष्ट्र से आया हूँ, मेरा प्रोफेशन चार्टर्ड अकाउंटेंट। मुझे मार्च 2001 में पहला अटैक आया, पुणे में मेरी एंजियोग्राफी हुई और एंजियोग्राफी के बाद मुझे एंजियोप्लास्टी करने के लिए एडवाइस किया गया। मेरी एंजियोप्लास्टी हुई, मेरे लेफ्ट आर्टरी में मुझे जो है 2 जगह ब्लॉक था तो उस पर काफी डिस्कशन हुआ किस प्रकार की स्टेन डाली जाए। उस डिस्कशन के बाद स्टेन डाली गई लेकिन 6 महीने के बाद मुझे फिर से तकलीफ शुरू हुई और फिर से दोबारा मुझे जो है एंजियोप्लास्टी के लिए एडवाइस किया गया। फरवरी 2002 में मेरी फिर से एंजियोप्लास्टी हुई, दोनों एंजियोप्लास्टी में मुझे लगभग 6 लाख रुपए खर्चा हुआ।
तो मेरा नाम है प्रेमनाथ भाई और मुझे 1.5 साल के कुछ दर्द से महसूस थी, मैं हॉस्पिटल गया और हॉस्पिटल वाले ने कहा ये तो आप अहमदाबाद को जाना पड़ेगा। तो अहमदाबाद गए, उन्होंने मेरे ग्राफी वगैरह चेक किया तो उन्होंने कहा आपके जी 3 ब्लॉकेस हैं, वो 3 ब्लॉकेस वो कहते फौरन आपको करने पड़ेंगे। तो उन्होंने वो ब्लॉकेस किए, वो ब्लॉकेस के दौरान उन्होंने जो उन्होंने गाइडनेस दी उस गाइडनेस पे चलते हुए भी फिर भी मुझे उसके ठीक 2.5 महीने बाद फिर वही ब्लॉकेस में महसूस हुए दर्द, वो फिर दोबारा मैं फिर वहां गया तो उससे फिर भी फर्क नहीं है, फिर भी अटैक आते रहे। पहले मेरा खर्च हुआ था 3 लाख के आसपास, फिर दोबारा उन्होंने जो ब्लास्टिंग किया अंदर उसको खोला, जो 3 रिंग डाले थे वो रिंग फिर भी वही ब्लॉकेज थे, फिर उन्होंने लिया 5.5 के आसपास फिर खर्चा आया 1.5 लाख का। और फिर भी मुझे अंदर से घुटन सी महसूस होती रही।
मेरा नाम राहुल भाई पट्टी है, मैं गुजरात अहमदाबाद से आया हूँ, मेरी उम्र 59 साल की है। मेरे को आश्रे 3 साल पहले अटैक आया था और अहमदाबाद में एडमिट किया था, वहां से मेरे को ऐसा बाईपास कराने का बोला, मैं पैसे की वजह से नहीं करा सका।
मेरा नाम विनोद शर्मा है, मैं कुरुक्षेत्र हरियाणा का रहने वाला हूं और एक नेशनलाइज्ड बैंक में मैनेजर के पद पर कार्यरत हूं। लास्ट ईयर फरवरी 2004 में मुझे हार्ट अटैक हुआ था। उस हार्ट अटैक के उपरांत मुझे गुजरात से कुरुक्षेत्र मेरे घर पे ले गए और 2 महीने तक मैं बेड पे रहा। नेशनल हार्ट इंस्टीट्यूट दिल्ली से मैंने अपना एंजियोग्राफी करवाया जून 2004 में, और उन्होंने भी मुझे गाइड किया कि आपको स्टंट डलवाने होंगे, आपका लगभग 2.5 लाख रुपया खर्च होगा। इतनी भारी विपत्ति या इतना भारी पैसे का खर्चा सुनकर हम लोग और ज्यादा परेशान हो गए और मानसिक तौर से मैं बहुत व्यथित हो गया।
जिस हिसाब से ये बीमारी बढ़ रही है, आज की जो प्रेजेंट मैनेजमेंट ट्रीटमेंट जो पद्धति है वो पूरे मास लेवल पे उसको कवर नहीं कर सकती, इसलिए हमें ये देखना होगा कि मास लेवल पे हम इसका क्या इलाज कर सके।
ये तो हमें पता है कि हार्ट डिजीज की एक्सटेंट क्या है, और ये भी पता है कि अगर उसको हम ट्रीट करने की कोशिश करेंगे तो दुनिया के सारे हार्ट इंस्टीट्यूट भी इतना सर्जरी या एंजियोप्लास्टी नहीं कर सकेंगे, तो इसका प्रिवेंशन इज द क्योर।
अगर आप देखें वेस्टर्न वर्ल्ड में तो आज की डेट में वहां पर रोग कम हो रहा है, क्योंकि उनका रहन सहन का तरीका बदल रहा है। जो ईस्टर्न वर्ल्ड है वो वेस्टर्न वर्ल्ड को फॉलो कर रहा है, और जो वेस्टर्न वर्ल्ड है वो ईस्टर्न वर्ल्ड को फॉलो कर रहा है। तो हमें सीखना है और ये देखना है कि इस रोग पे रोकथाम की जाए, और रोग पे रोकथाम करने के लिए हमें कुछ अच्छे मॉड्यूल तैयार करना होंगे जिससे कि भारतवर्ष इस रोग से वंचित रहे।
हमारे सोच के ढंग, खान पान, सोने का समय और एक प्रतिस्पर्धा की इच्छा हमें धीरे धीरे अपने आप से लड़ने और हृदय रोगों की ओर अग्रसर करती जा रही है। लेकिन क्या सकारात्मक सोच इन सबको बदल सकती है? अभी राजस्थान भारत के इस शांत वातावरण में इसी पर एक बहुत महत्वपूर्ण शोध चल रहा है।
भारत के राजस्थान प्रांत में स्थित आदि एक मनमोहक पर्वतीय स्थल, यह स्थान एक दिशापूर्ण वैज्ञानिक शोध का ही केंद्र है। यहाँ हृदय संबंधित रोगों के लिए जीवन शैली में सकारात्मक, आध्यात्मिक, मानसिक व शारीरिक बदलाव लाकर इस बीमारी से ठीक होने व रोकने के विषय में असाधारण कार्य चल रहा है।
ग्लोबल हॉस्पिटल के कार्डियोलॉजिस्ट हमारे आदरणीय डॉक्टर सतीश गुप्ता जी ने आज से सात वर्ष पहले इस बात की ओर ध्यान दिया और औरों का भी खिंचवाया, और उन्होंने इस पर काफी अपना टाइम दिया है, मेहनत की है, रिसर्च की है, स्टडी की है, और लगभग 1000 या उससे भी अधिक पेशेंट्स को, मरीजों को उन्होंने स्वास्थ्य वापस कैसे उनको प्राप्त हो, उनकी दिल की बीमारी के ऊपर वो विजय कैसे पाए, उन्होंने उनको एक नारा भी दे दिया कि आप दिल के मरीज नहीं, आप दिल वाले हैं। एक पॉजिटिव अप्रोच उन्होंने उनको दी, जीवन के प्रति, स्वास्थ्य के प्रति एक नया दृष्टिकोण दिया, और उसके साथ साथ उन्होंने प्रैक्टिकल गाइडेंस दी है।
फरवरी 98 में ये प्रोजेक्ट शुरू किया गया मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंदर, और इसमें हमारे साथ रक्षा अनुसंधान परिषद ने हमारे साथ सहयोग किया, वहां का जो डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ फिजियोलॉजी एंड अलाइड साइंसेज है वहां के साइंटिस्ट हमारे साथ थे, और इसमें हमने एक यूनिक यूजर फ्रेंडली हेल्दी लाइफस्टाइल प्रोग्राम डेवलप किया, जो कि बहुत सरल है, सभी उसको यूज कर सकते हैं, किसी भी धर्म के हों, किसी भी जाति के हों, किसी भी उम्र के हों। और इसको हमने दो स्टडी रिसर्च की, उसमें इसकी क्या इसकी ये एफिकेसी कहें या उसको एफिकेसी को नापा गया, एक माउंट आबू ओपन हार्ट ट्रायल, एक आबू हेल्दी हार्ट ट्रायल।
हम एक यूनिक स्टडी
साइंटिफिक स्टडी हमने इनिशिएट किए थे जब मैं डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ फिजियोलॉजी एंड एलाइड साइंसेस के निदेशक था। उस टाइम डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम पूरा हमारा डीआरडीओ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के साइंटिफिक एडवाइजर थे। उस टाइम हम माउंट आबू में डॉक्टर गुप्ता और ग्लोबल हॉस्पिटल रिसर्च सेंटर में काम कर रहे हैं, कार्डियोलॉजिस्ट हैं, उनके साथ मिलकर एक यूनिक स्टडी इनिशिएट किए थे। जिस स्टडी में हम लाइफस्टाइल इंटरवेंशन के ऊपर उसको एक्सपेरिमेंट किए थे। अगर हम मन और तन के बीच में एक बहुत अच्छा बहुत गूढ़ा समावेश ला सकते हैं तो किसी भी डिजीज को हम कंट्रोल कर सकते हैं। ये सोच दिमाग में रखते हुए हमने हर डिजीज को रोकने, आगे बढ़ने से रोकने के लिए, या जिनको हार्ट डिजीज हो चुकी है उनके आर्टरीज खोलने के बारे में एक्सपेरिमेंट्स किए।
इसमें हमने दो ग्रुप बनाए, एक ग्रुप जिसको हमने स्वस्थ जीवन शैली ग्रुप नाम दिया, दूसरा कंट्रोल ग्रुप। और स्वस्थ जो स्वस्थ जीवन शैली ग्रुप था उसमें हमने उनको इस यूनिक यूजर फ्रेंडली जो हेल्दी लाइफ स्टाइल प्रोग्राम था इसको दिया, और कंट्रोल ग्रुप में हमने डाइट कम वसायुक्त अधिक फाइब अधिक रेशे वाला शाकाहारी भोजन दिया और सुबह शाम सैर उनको बताई गई, और जो यूजुअल मेडिसिन दवाइयां चल रही थी वो चलती रही। और कंट्रोल ग्रुप और जो हमारा स्वस्थ जीवन शैली ग्रुप था उसको हमने राजयोग मेडिटेशन, तनाव से मुक्त होने के लिए राजयोग मेडिटेशन, और वही आहार स्वस्थ लो कम वसायुक्त अधिक रेशे वाला शाकाहारी भोजन और सुबह शाम सैर, और वही दवाइयां चलती रही। और दोनों ग्रुप्स को ये सहूलियत थी कि वो कभी भी तकलीफ हो तो अपनी दायित्व से एंजियोप्लास्टी करा सकते हैं।
ट्रैक प्रोग्राम में शुरू में हमें पेशेंट्स को मोटिवेट करने में थोड़ी सी डिफिकल्टी हुई थी। बहुत से लोग जो इंटेलिजेंट थे वो तो हमारी बात को समझते थे, लेकिन जो नॉर्मल पेशेंट्स हैं उनके लिए थोड़ा एक्सेप्ट करना मुश्किल था। पर धीरे धीरे ज्यादातर रोगी आते गए, फिर उसके बाद जो जिन लोगों को फायदा हुआ, जिन लोगों के जीवन में परिवर्तन आया, उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव हुई, तो उन्होंने दूसरे पेशेंट्स को मोटिवेट किया।
हेल्दी शब्द का अर्थ ही है हील दाई, अर्थात हील योरसेल्फ। हम खुद अपने स्वास्थ्य के लिए खुद जिम्मेवार हैं, इसके लिए उनको इसमें ट्रेनिंग दी जाती है कि हम अपने स्वास्थ्य को कैसे बनाए रखें। दूसरा, स्वस्थ का अर्थ है स्व माने आत्मा, स्था माने स्थित, स्व माने इनर सेल्फ, स्था मीन्स कॉन्शियस, दैट मीन्स स्वस्थ मीन्स इनर सेल्फ कॉन्शियस। और इनक्यूरेबल शब्द का, जो हार्ट की बीमारी इनक्यूरेबल है आज के हिसाब से, तो इनक्यूरेबल का मतलब है इन प्लस क्यूरेबल, अर्थात ये बीमारी क्यूरेबल है अगर हम अंदर जाएं तो। तो इनर सेल्फ कॉन्शियस होने से बीमारी के अंदर जा सकते हैं और बीमारी का इलाज कर सकते हैं। और तीसरी बात है कि इसमें हम मल्टी डायमेंशनल अप्रोच, सोल माइंड बॉडी मेडिसिन, आत्मा मन और तन तीनों एनर्जी का बैलेंस करें, स्पिरिचुअल एनर्जी, मेंटल एनर्जी और फिजिकल एनर्जी, तभी हम सदा स्वस्थ रह सकते हैं, सदा खुश रह सकते हैं।
कोरोनरी आर्टरी डिजीज का तीन कारण है, एक तो उनका ज्यादा तनाव स्ट्रेस, और दूसरा है जब लोग फैट ज्यादा लेते हैं, अभी जंक फूड ज्यादा लेते हैं, और तीसरा है हम सेडेंटरी लाइफ स्टाइल में फिजिकल एक्सरसाइज नहीं करते हैं, और दफ्तर में भी कुर्सी में बैठ के काम करते हैं और मोबिलिटी नहीं है। सो सेडेंटरी लाइफ स्टाइल, ये तीनों फैक्टर्स है कोरोनरी आर्टरी डिजीज का कारण है। सो इसलिए हम लाइफ स्टाइल इंटरवेंशन में ये तीनों को हमने इस्तेमाल किया है। पहले तो स्ट्रेस के लिए ब्रह्म कुमारी राजयोग मेडिटेशन इस्तेमाल किया है।
जब भी कोई आता है तो सबसे पहले तो यही बताता है, जब वो ये हेल्दी लाइफस्टाइल कॉन्सेप्ट को समझ जाता है तो यही कहता है हमें इस चीज की नॉलेज ही नहीं थी। तो इसका मतलब मैं फिर यही कहती हूँ कि लैक ऑफ नॉलेज या सेल्फ रियलाइजेशन, सेल्फ अवेयरनेस के उनके अंदर कमी होती है, नॉलेज मिलती है। तो कहता है कोई बदलता है नहीं बदलता, मैं जरूर बदलूंगा। जैसे कि हम जानते हैं कि खुद को अगर हम बदलते हैं, स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन हो सकता है।
विचार
कोई हवा में गुलगुले नहीं है। विचार हमारे दिमाग में जैसे भी आएगा, दिमाग उसी के हिसाब से रिस्पॉन्स करेगा।
जिसको भी बीमारी होती है पहले वो अपने आप को चेंज करता है, जिसको उसका इफेक्ट उसकी पत्नी के ऊपर भी पड़ता है। वो कहती है वो उनका स्वभाव बहुत चेंज हो गया, पहले क्रोध करते थे, चिंता में रहते थे, लेकिन अब वो चिंता कम हो जाती है तो उनको भी अच्छा लगता है, बच्चों को भी अच्छा लगता है। पहले बच्चे उनके पास जाने से डरते हैं, वाइफ कुछ अपनी बात शेयर करने से डरती है, लेकिन अब वो शेयर कर सकती है। तो इस तरीके से जब उनके अंदर व्यवहार में परिवर्तन आता है तो उनका पूरा फैमिली चेंज हो जाता है। और उनको हम टेक्निक बताते हैं कि वैसे भी कोई प्रॉब्लम आती है, चाहे ऑफिस के अंदर आती है या घर में या कोई सामाजिक प्रॉब्लम आती है, तो हमें उस प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए सोल कॉन्शियस स्थिति के अंदर रहना जरूरी है। लवफुल होकर, शुभ भावना रखते हुए और शांति से हम किसी भी प्रॉब्लम को सोल्व कर सकते हैं।
अगर हम किसी प्रोसेस से अपने विचारों की दिशा को बदल लें, नेगेटिव थॉट्स की बजाय पॉजिटिव थॉट्स लाना शुरू कर दें जो खुशी से भरे हुए हो, सबका सुख चाहने वाले हो, तो आपका जो ब्रेन है वो सिंपैथेटिक नहीं बनाएगा, पैरासिंपैथेटिक एक्टिविटी देना शुरू करेगा और खुशी के हार्मोन आने शुरू करेंगे आपके ब्रेन से। जो स्ट्रेस हार्मोन है वो कम बनने शुरू हो जाएंगे, तो आपके दिल के ऊपर जिसे बोझ कहते हैं वो कम हो जाएगा। हार्ट डिजीज डिले होगी या नहीं भी हो सकती है, जिनको हो गई है उनकी रिग्रेशन या आरटीज उनकी खुलनी शुरू हो जाएगी।
दूसरा है लो फैट हाई फाइबर डाइट, उनका डाइट रेगुलेशन में फ्रूट्स वेजिटेबल्स और फैट कम किया है और 15 ग्राम्स रोज फैट लेना कंट्रोल किया था। कहा जाता है जैसा अन्न वैसा मन। हार्ट की बीमारी में अन्न का बहुत महत्व है, भोजन का बहुत महत्व है। अगर हम अधिक वसायुक्त भोजन खाते हैं और जिसमें रेशा कम हो ऐसा, और नॉन वेजिटेरियन या मांसाहारी भोजन हार्ट की बीमारी पैदा करता है, ऐसा बहुत सारी रिसर्च स्टडीज में पाया गया है। किंतु अगर हम कम वसायुक्त अधिक रेशे वाला शाकाहारी भोजन ग्रहण करते हैं तो उससे ये पाया गया रिसर्च के डिफरेंट और रिसर्चेज में भी और हमारी रिसर्च में भी, तो हार्ट अटैक की संख्या कम हो जाती है। इस प्रोग्राम में, सीएडी प्रोग्राम में, जो हम अपने पेशेंट्स को एडवाइस करते हैं या सलाह देते हैं भोजन खाने की, तो उसमें तीन बातें हैं। ये खाली नहीं कि क्या खाना है, कब खाना है और कैसे खाना है, तीनों बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा है रोज सुबह और शाम 30 या 45 मिनट पैदल जाना है, वॉकिंग, रेगुलर वॉकिंग करना है। तो जैसा कि हम इनको बता रहे हैं, हमारे इस प्रोग्राम का, सीएडी प्रोग्राम का जो मुख्य जो पार्ट है वो है, जैसे हमने बताया, राजयोगा, डाइट एंड एक्सरसाइज। एक्सरसाइज जो हमारे यहाँ है वो सिंपल वॉकिंग है, सिंपल सैर, सुबह और शाम सैर करनी है। और सैर कैसे करनी है? सुबह सूर्य उदय के बाद और शाम को सूर्य छिपने से पहले, क्योंकि धरती पर सिर्फ प्लांट्स ही ऑक्सीजन बनाते हैं। और ये लिखने में आया, रिसर्च डिफरेंट जो रिसर्च हुई है उसमें पता लगा है कि सुबह सुबह जब सूरज निकलता है उसमें प्लांट सबसे ज्यादा ऑक्सीजन बनाते हैं, और शाम को दिन छिपता है तो फिर ज्यादा ऑक्सीजन बनती है, दोपहर के टाइम ऑक्सीजन कम हो जाती है, रात के टाइम प्लांट्स जो हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। तो रात के टाइम कभी ना टहलें, दिन छिपने के बाद कभी ना टहलें, सूर्य उदय से पहले ना टहलें, सूर्य उदय के बाद टहलें और सूर्य छिपने से पहले टहलें, वॉकिंग करें। और इसमें जो नियम है वो ऐसा है कि एक बार स्नान कर लिया जाए, स्नान करने के बाद टहलें, पेट साफ हो जाए, पानी उसके बाद स्नान कर लें ताकि आपके जो छोटे छोटे जो स्वेट ग्लैंड्स के पोर्स खुल जाएं, उसके बाद वॉकिंग करना शुरू करें। सूर्योदय जैसे आजकल 6:30 बजे हो रहा है तो 6:30 बजे वॉकिंग करना शुरू करें। और शुरुआत जैसे हम कार चलाते हैं इसी तरह से वॉकिंग करनी होती है, पहले फर्स्ट गियर लगाएं, फिर सेकंड गियर, फिर थर्ड गियर, फिर फोर्थ गियर, स्पीड बढ़ाते जाएं, अर्थात 5 मिनट वार्मिंग अप पीरियड और फिर मेंटेन करने का, 30-35 मिनट मेंटेन करिए और फिर 5 मिनट कूलिंग डाउन पीरियड। ये तीनों हमारे इंटरवेंशन किए थे।
सो जिसमें हमने फिजियोलॉजिकल, बायोकेमिकल, साइकोलॉजिकल, क्लिनिकल पैरामीटर्स, पूरा साइंटिफिक पैरामीटर्स हमने मॉनिटर किए थे पहले स्टडी शुरू होने से पहले और इंटरवेंशन करने के बाद।
आपको ज्ञात हो कि सभी पेशेंट, सभी जो हार्ट पेशेंट्स आए जिनको हम दिलवाले कहते हैं, उनको सब पहले एंजियोग्राफी कराकर के आए थे और 80% उनमें से दो या तीन आर्टरी उनकी ब्लॉक थी, अर्थात वो खतरनाक बीमारी से पीड़ित थे।
शरीर का नाम ओम प्रकाश पहुजा, उम्र 68, शिक्षा इंजीनियरिंग में डिग्री दिल्ली से किया, फिर एमएस का अध्ययन यूके और यूएसए से किया और पीएचडी फाइबर साइंसेज में यूरोप से किया 1966 में। 30 साल इंडस्ट्री में काम करने के बाद पिछले 15 साल से मेरा व्यवसाय है मैनेजमेंट कंसल्टेंट, और उसके लिए मुझे काफी देशों में घूमना पड़ता है और मेरे इस वक्त 27 देशों में कामकाज और ऑफिसेज हैं। शरीर की लिमिटेशन के हिसाब से 1997 में जब मुझे कुछ चलने फिरने की दिक्कत हुई और छाती में कुछ दर्द महसूस होता था तो टीएमटी टेस्ट कराया जो पॉजिटिव निकला, और उसके बाद अक्टूबर 97 में एंजियोग्राफी कराई पहली बार। उस एंजियोग्राफी में 6 ब्लॉक्स निकले, एक 100%, 3 90%, एक 80% और एक 60%। तो इट वॉज ए केस ऑफ टीवीडी, तीनों नलियों में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम थी।
माई नेम इज ओम बरतैया, उल्कान और बरतैया। I was graduated in Allahabad High School to be honorary judge. Now I have been retired. पेन होता था, चेस्ट में पेन होता था, ऐसा लगता था कि बस बिस्तर और पलेरा कोई बोले नहीं। हमने कानपुर रिजेंसी में एंजियोग्राफी कराई थी, 98 में कराई थी, तो उसमें हमको 3 ब्लॉकेज मिले थे, 100% थे, 90% था और एक 70% था। डॉक्टर ने कहा कि हम आपको अपने इससे जाने नहीं देंगे हॉस्पिटल से, और आपको अभी एडमिट होना है, आपकी सर्जरी होगी।
इन द्वारा 2004 इन द मंथ ऑफ अप्रैल 2004 में मेरा दिल का कुछ दर्द आया, पेन आया। इसी वक्त हम कलकत्ता का जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है पीवी हॉस्पिटल में हम दाखिल हुआ, वहां का डॉक्टर को मैंने एंजियोग्राफ किया, आबा टेस्ट किया, और उसका देखा जो मेरा लेफ्ट साइड का दो आर्टरी ब्लॉकेज है और राइट का एक, दो साइड में सुबह 76 एक है, 58 है और राइट साइड में 100 ब्लॉक है।
मैं सतवान सिंह, चंडीगढ़ का रहने वाला हाँ, 50 साल की उम्र है। सितंबर 2003 जो मेरी बाहर की पेन आई, मेरे चेस्ट में थोड़ी जी पेन हुई, तो मैं जनरल हॉस्पिटल से जाके दिखाया, उन्होंने मेरी ईसीजी की जो कि अब नॉर्मल सी, उन्होंने मैं एंजियोग्राफी वास्ते कहा जिसे मेरी 3 ब्लॉकेज 100% 90% आई।
आई वॉज वेरी लकी कि आई गॉट माई अटैक राइट ऑन द हॉस्पिटल। My family was with me. They all rushed me to the ICU unit. और वहां मुझे एडमिट कर लिया गया। सेकेंड डे मेरा एंजियोग्राफ किया गया और एंजियोग्राफ में मेरे को कहा गया कि आपको इमीडिएट बाईपास कराना है। तो 8 ब्लॉक्स निकले मेरे एंजियोग्राफ में, जिसमें से 200%, 295, 1 90, बाकी 60 और 75।
सिविल इंजीनियर महेंद्र जुर्गर, उज्जैन फ्रॉम हरियाणा। 2003 में मुझे फर्स्ट टाइम हार्ट प्रॉब्लम हुई थी दिसंबर में, और मुझको ऑफिशियली बहुत ज्यादा हार्डवर्क करना पड़ता था, ऐसे सोच लीजिए कि मारा मारी थी ऑफिस में। तो इतना ज्यादा टेंस हो गया कि एकदम जैसे कि जा रहा था तो बाइक पे जा रहा था, एकदम बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हुई और बहुत चेस्ट पेन हुआ। मुझे पता चला कि जिसने डॉक्टर ने बताया कि हार्ट प्रॉब्लम है, एंजियोग्राफी करवाई तो उसे मेरी 3 जिस ब्लॉकेज मिली, एक में 90%, एक में 80% और एक में 60% ब्लॉकेज थी।
मैं ज्ञानचंद अरोड़ा रोहतक से हूं, हरियाणा से, और मेरी प्रिंटिंग प्रेस है। मेरी उम्र 70 साल है। 2001 में मुझे अटैक हुआ और मैं आईसीयू में 4 दिन रहा। फिर 2002 में मैंने एंजियोग्राफी दिल्ली ऑल इंडिया में कराई कि आपका तो 100% है, एक 90 और 80 है और 3 ब्लॉक और हैं जो 50-60 के करीब हैं, तो आपको जो ऑपरेशन कराना पड़ेगा।
मेरा नाम भी दया समय जयपुर राजस्थान से आया है। मेरी उम्र 59 है। 10-15 कदम चलने पर मेरे को पसीना और दम रुक रहा है। मैंने SMS हॉस्पिटल जयपुर में एंजियोग्राफी कराई तो उसमें 95% एक में आर्टरी में और 80% दूसरी आर्टरी में ब्लॉकेज मिला।
मेरा नाम है मणि भाई प्रजापति। मैं मेहसाणा गुजरात से आया हूँ। मैं मेहसाणा दूसरा के डेयरी में सर्विस करता हूँ। मेरी उम्र है 57 ईयर्स। मेरे को हृदय रोग की बीमारी 27/10/2003 रात को 2 बजे मेरे को एहसास हुआ, घबराहट हुई और दो हाथ मेरे को दुखने लगे। उस टाइम मैंने डॉक्टर साहब को फोन किया तो डॉक्टर साहब ने बताया कि तुम अभी तुरंत हॉस्पिटल में दाखिल हो जाओ। तो मैं हॉस्पिटल में दाखिल हुआ, 7 दिन तक रहा। फिर बाद में
दिसंबर को यह गुप्ता साहब को मैं मिलने को आया। गुप्ता साहब ने मैं जब मिला तो मेरे सब रिपोर्ट ये सब कुछ देखा तो उन्हें बताया कि तुम्हें अभी एंजियोग्राफी कराना पड़ेगी। एंजियोग्राफी जब कराया तो एंजियोग्राफी में मेरे को 4 ब्लॉक आई, एक 99 है, 95 है और 80 और 70। ये 4 नली ब्लॉक बताई।
मेरा लौकिक नाम VL मैसूरी है। मैं जोधपुर से हूँ, बाई प्रोफेशन एडवोकेट हूँ। तो 30 सितंबर 2000 को अजमेर में एक टूरिस्ट कॉन्फ्रेंस थी और आफ्टरनून के सेशन में मुझे एक पेपर पढ़ना था। तो उसके थोड़ा 10-15 मिनट पहले मेरी तबीयत एकदम खराब होने लगी। मुझे ऐसा लगा जैसे मेरा गला घुट रहा है, मेरे से सांस नहीं लिया जा रहा है और मेरी आवाज बंद सी हो रही है। तो मुझे को ऐसा लगा कि मैं ये पेपर पढ़ नहीं पाऊंगा। हम अहमदाबाद गए, नेक्स्ट डे हमारी एंजियोग्राफी हुई और शाम को जब मुझे उसका रिजल्ट देखने को मिला तो मैं हैरान हो गया कि मेरे LAC में 3 ब्लॉक हैं और RAC में मेरे 4 ब्लॉक हैं। और RAC में जो मेरे ब्लॉक थे वो ओपनिंग में थे ब्लॉक 80% और मिडिल में थे 90%।
मेरा नाम मोहनलाल जी रावल है। मैं सिर्फ राजस्थान से आया हूँ। मुझे 3 साल पहले हार्ट अटैक हुआ था जो काफी दर्द हो रहा था। तो मुझे अहमदाबाद कृष्णा हरिंद हॉस्पिटल ले गए। उस समय डॉक्टर ने बताया कि मेरी हार्ट की बम्पिंग 5% है और मेरे काफी तकलीफ है, उनका ये पैर प्लास्टिक जीवित रहनी होगी। तो इसके बाद ऑपरेशन हुआ। धीरे 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 मुझे मैं सक्रिय हो गया था। बिल्कुल मुझे ताकत नहीं थी, घुटन से महसूस होती थी और थोड़ा भी चलता था मुझे थकान महसूस होती थी।
मेरा नाम मोहन भाई प्रजापति। मैं करोल से गुजरात में गुजरात से आता हूँ। मुझे 3 साल पहले 2002 में जब दर्द हुआ, अपना एंजियोग्राफी करवाया तो एंजियोग्राफी में हमारा 3 ब्लॉकेज आया, एक 80%, एक 70%, एक 50%। तो उसी टाइम डॉक्टर ने हमें बताया आपको तुरंत दाखिल हो जाना है, आपको एंजियोप्लास्टी करनी होगी।
मेरा नाम योगेंद्र भाई पटेल है। मैं अहमदाबाद का नेटिव हूँ और मैं इंडस्ट्रियलिस्ट हूँ। मुझे जून 1999 में पहला अटैक आया, उसके बाद में सेकंड अटैक अगस्त 1999 में आया और फैमिली मेंबर्स और फैमिली डॉक्टर्स ने ये फाइनल किया कि मुझे बाईपास ऑपरेशन करना है। एंजियोग्राफी किया, एंजियोग्राफी के बाद में पता हुआ कि मुझे 3 ब्लॉकेज है और मेरा EF जो है हार्ट का इजेक्शन फैक्टर वो 20 था। तो डॉक्टर लोग मेरे पास आके मुझे बताया कि भाई आपका बाईपास ऑपरेशन ये कंडीशन में 20% EF में हो नहीं सकता है, तो आपको कैसे भी हालत में ये ऑपरेशन करने जाएंगे हम लोग तो रिस्क है और आप बच नहीं सकोगे। ऐसी हालत में मुझे ना बोल दिया और सजेस्ट किया कि आप मेडिकल ट्रीटमेंट पे आप अहमदाबाद वापस जाके मेडिकल ट्रीटमेंट लो और जहां तक जी सको वहां तक जियो। मैं डायबिटीज, BP और एंजाइना पेन के बीच में, जीवन और मृत्यु के बीच में मैं जिंदगी निकालता था। ऐसा मैंने 1.25 बरस सोते सोते निकाला।
सभी को अपनी साथी के साथ बुलाया, जीवन साथी के साथ बुलाया गया। उनको यहां 7 दिन ट्रेनिंग दी गई। 7 दिन ट्रेनिंग देने के बाद उनको वापस उनके घर के पास जो ब्रह्मा कुमारी के राजोगा सेंटर्स हैं, भारत में लगभग 7,000 केंद्र हैं, उनके घर के पास उनसे अटैच कर दिया गया, जहां पर उनको डेली बेसिस पर नियमित रूप से फॉलो किया गया और हर हफ्ते उनके ग्रुप सपोर्ट सेशंस या कहें उनको आपस में मिलना जुलना उनका रखा गया ताकि अपने आपस में बात कर सकें। और छह महीने पर फिर उनको बार बार बुलाया गया, छह छह महीने पर बुलाया गया और एक साल पर उनकी एंजियोग्राफी दोबारा कराई गई। उनके जो दूसरे पैरामीटर्स जो हमने रिसर्च किए थे, जो स्टडी किए थे, उनके मानसिक स्तर के विश्लेषण, उनकी अंदर मानसिक अंदर शांति की अवस्था कैसी है वो ईईजी के द्वारा और हार्ट रेट वेरिएबिलिटी के द्वारा मापी गई। उनकी जो है जो कोलेस्ट्रॉल लेवल्स, बैड कोलेस्ट्रॉल गुड कोलेस्ट्रॉल लेवल्स उनके सब मापे गए, शुगर लेवल्स मापे गए, हार्मोन्स के लेवल, दो तरह के हार्मोन्स होते हैं, तनाव वाले हार्मोन्स और खुशी वाले हार्मोन्स, दोनों को नापा गया, पेशाब में और खून में नापा गया था। और उनको भी इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर्स बनाए गए थे, इंडिपेंडेंट स्टडी के ऑब्जर्वर्स बनाए गए थे, उन लोगों ने उसको एनालाइज रिजल्ट्स को एनालाइज किया और एक साल के बाद उनके रिजल्ट्स को देखा गया। और इन पेशेंट्स को अभी तक हम फॉलो कर रहे हैं। दोनों ग्रुप में क्या क्या परिवर्तन होता है, फर्क पड़ता है। हम जिसको पैरामीटर्स हर छह महीने के अंदर एक बार हमने किया था उसमें हमने देखे हैं काफी पेशेंट्स में रिग्रेशन, मतलब कहीं वो ब्लॉक हो गया, कोरोनरी ब्लड वेसल्स ब्लॉक हो गया, वो खोलना शुरू हो गया, जिसमें क्लॉट होता है वो डिजॉल्व होना शुरू हो गया। इसलिए पेरिफेरल सर्कुलेशन परफ्यूशन बोलते हैं, मायोकार्डियल परफ्यूशन, उसका इंप्रूवमेंट भी हमने साइंटिफिक रूप में हमने दिखाया कि एंजियोग्राफी में उनके जो ब्लॉकेजेस थे, जिन लोगों ने इस प्रोग्राम को सिंसियर नियमित रूप से फॉलो किया, उनके ब्लॉकेजेस काफी कम हो गए, एवरेज में लगभग 11% ब्लॉकेज कम हुआ एवरेज, जो कि अभी तक का सबसे अधिक है। और जो 100% ब्लॉकेजेस थे, जो कैल्सीफाइड जिसे कहते हैं, बहुत उसमें हड्डी जैसे बोन जैसे बन जाते हैं, वो भी खुल गए, जो कि पहली बार ही किसी रिसर्च में शो किया गया है।
मैंने प्रोग्राम फरवरी 98 में गुप्ता जी के नीचे माउंट आबू में फरवरी 98 पहले बैच में मुझे ज्वाइन होने का सौभाग्य मिला। इस प्रोग्राम में हर तीन और छह महीने के बाद हम आते थे और सात दिन रहने का प्रोग्राम होता था। और इस प्रोग्राम में डाइट, एक्सरसाइज और राजयोगा मेडिटेशन को सिखाया जाता था। और उसके बाद रिपीट एंजियोग्राफी मैंने जुलाई 2000 में निकाली, जिसमें सिर्फ दो ब्लॉक ही रह गए और चार ब्लॉक खत्म हो गए। 100% ब्लॉक में कोलेटरल्स डेवलप हो गए, जो नलीफाई हो गया, एक 90% जो था वो जीरो हो गया और एक 80% और 60% वाले जो दो ब्लॉक थे वो प्लाक्स रह गए छोटे से।
वर्ल्ड के कोई कार्डियोलॉजिस्ट ये नहीं मानते थे कि कोई कोरोनरी आर्टरी में डिपोजिट का रिग्रेशन हो सकता है, ये वर्ल्ड के कोई कार्डियोलॉजिस्ट नहीं मानते थे। और अब वर्ल्ड के कार्डियोलॉजिस्ट को ये कन्विंस हो गया है कि नहीं, रिग्रेशन हो सकता है विदाउट सर्जरी, ये माय स्पेशलिटी माय राज योगा। तो जो प्रोग्राम दिया डॉक्टर साहब ने, सवेरे मेडिटेशन करना, डाइट लेना बराबर, घूमना, एरोबेटिक एक्सरसाइज करना, ये मैंने रेगुलर किया। 1 फरवरी 2001 को मैं अहमदाबाद गया, रिपीट एंजियोग्राफी करवाई और एंजियोग्राफी के रिजल्ट लेकर जब मैं वापस आया तो डॉक्टर साहब उसल पड़े, कहने लगे तुमने 4 महीने के अंतर अंदर जो इम्प्रूवमेंट करके दिखाया है वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी है।
6 महीने बाद में मैंने वापस मेरा एंजियोग्राफ कराया, उसमें मेरा कंप्लीट 5 ब्लॉक्स जो मेजर ब्लॉक्स थे वो सारे के सारे एंजियोग्राफ के अंदर नहीं आ पाए। ये 5 ब्लॉक निकलने की वजह से मैं अपने सारे काम अब आराम से करता हूं।
दिसंबर 2004 को कैट प्रोग्राम के लिए आया, कैट प्रोग्राम तो किया और ट्रेनिंग लिया, उसके बारे में डॉक्टर जी ने जो बोला मेडिटेशन, मेडिसिन, एक्सरसाइज एंड फूड, वो भी हम उसके बाद 9 मंथ हो गया हम फॉलो करता है। वो जो दिल का दर्द था वहां उस समय पेन था, वो 1 महीने बाद से मेरा काम हो जाता था। अब अभी जो हम आया मैं बहुत अच्छा है।
मैं डॉक्टर सतीश गुप्ता जी का कंटेक्ट किया तो उन्होंने मैं कहा कि सितंबर के कैंप लग रहा है तुम आ जाओ। कैंप की पहले दिन ही मैं इस तरह महसूस होया कि मैं जिमें एक स्वर्ग के आ गया हाँ। मैं जरा सिर्फ 2 कदम ही भी नहीं चल सकता सी, मैं तीजे दिन 20 मिनट पूरा चलिया। मैं चंगी तरह याद है ਤੇ 6ਵੇਂ ਦਿਨ ਗੁਪਤਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਕਨਿਕ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ 1 ਘੰਟਾ ਇੱਥੇ ਡਾਂਸ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਯਾਦ ਨੇ ਜਦੋਂ ਡਾਕਟਰ ਸੁਲਾ ਯਾਦਵ ਜੀ ਨੇ ਗੁਪਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਪਤਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਪਾਗਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਗੇ, ਇਹ ਹਾਰਟ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਐਡੀ ਚਮਤਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਅੱਜ ਆਪ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਦਿਲ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਆਏ ਥੇ ਤੋ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸੇ ਚਲ ਪਾਤੇ ਥੇ ਔਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਉਦਾਸ ਥੇ। ਔਰ ਆਜ 5 ਦਿਨ ਕੇ ਬਾਅਦ ਯੇ ਜਬ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੋ ਫਾਲੋ ਕੀਆ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੋ ਸਮਝਾ ਹੈ, ਮਨ ਮੇਂ ਇਨਕੇ ਡਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਸਭ ਡਾਂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਗਾਣਾ ਗਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਚਿਹਰੇ ਚਮਕ ਰਹੇ ਹੈ, ਖੁਸ਼ ਹੈ।
ਕੋਈ ਯਹਾਂ ਕਾ ਪਤਾ ਚਲਾ ਕੈਡ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੋ ਜੇ ਮੈਨੇ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਅਟੈਂਡ ਕੀਆ ਤੋ ਜਬ ਮੈਂ ਘਰ ਪਰ ਰਹੀ ਥੀ ਉਸਕੇ ਬਾਰੇ ਮੈਨੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਾ ਥਾ ਕਿ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਵਾਸਤੇ ਜੈਸੇ ਕਿ ਮੌਤ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਐਸੇ ਡਰ ਸੇ ਜੀਤਾ ਥਾ ਲੇਕਿਨ ਅਬ ਜਬਕਿ ਇਹ ਮੇਰਾ ਤੀਸਰਾ ਸੈਸ਼ਨ ਹੈ ਅਟੈਂਡ ਕਰਨ ਦਾ ਕੈਡ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਾ ਔਰ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਸ਼ਚਿੰਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੂੰ। ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਇਤਨੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਈ, ਇਤਨੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਈ, ਮੈਂ ਕੁਛ ਵੀ ਕਾਮ ਕਰ ਸਕਤਾ ਹੂੰ, ਕਿਤਨਾ ਵੀ ਦੌੜ ਸਕਤਾ ਹੂੰ ਔਰ ਜੋ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਰ ਸਕਤਾ ਮੈਂ ਵੋ ਕਰ ਸਕਤਾ ਹੂੰ।
ਯਹਾਂ ਮੈਂ ਆਇਆ ਔਰ ਉਸਕੇ ਬਾਅਦ ਯਾਨੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਟੈਂਡ ਕੀਆ 2003 ਮੈਂ ਸਪਟੰਬਰ ਮੈਂ, ਫਿਰ ਉਸਕੇ ਬਾਅਦ ਜੂਨ ਮੈਂ 4 ਮੈਂ, ਫਿਰ ਔਰ ਉਸਕੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਅੱਜ ਐਂਜੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਕਰਾਓ ਤੋ ਐਂਜੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਜੋ ਹੈ ਕਰਵਾਈ ਤੋ ਉਸਮੇ ਕਾਫੀ ਫਰਕ ਮਿਲਾ ਐਂਜੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਮੈਂ ਔਰ ਮੈਂ ਆਪ ਬਿਲਕੁਲ ਫਸਟ ਕਲਾਸ ਹੂੰ, 70 ਸਾਲ ਹੂੰ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕਾਮ ਕਰਤਾ ਹੂੰ ਔਰ ਆਤਾ ਜਾਤਾ ਵੀ ਹੂੰ, ਹਰ ਕਾਮ ਕਰਤਾ ਹੂੰ।
ਸਭੀ ਕਰਨਗੇ ਰਾਜਯੋਗ ਐਰੋਬਿਕ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਔਰ ਖਾਣ ਪਾਣ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਏ ਇਹ ਸਭ ਹਮਾਰੇ ਕੋ ਯਹਾਂ ਸਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਵਹ ਖਿਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਸਕੇ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਜੈਪੁਰ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਘਰ ਗਿਆ ਤੋ ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇ ਮੈਨੇ ਪੂਰਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇ ਯਹਾਂ ਹਮਾਰੇ ਕੋ ਰੱਖਾ ਗਿਆ ਸਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਉਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇ ਮੈਨੇ ਪੂਰਾ ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ ਜਾਣ ਦਿਆ। ਐਸੇ ਹਮ 5 ਦੁਪਹਿਰ 6 ਦੁਪਹਿਰ ਯਹਾਂ ਪਰ ਆਏ ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇ ਬਤਾਇਆ ਗਿਆ ਉਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇ ਹਮ ਰਹਿਣੇ ਲੱਗ ਗਏ। ਉਸਕੇ ਬਾਅਦ ਡਾਕਟਰ ਸਤੀਸ਼ ਗੁਪਤਾ ਕੀ ਸਲਾਹ ਤੋ ਦੁਬਾਰਾ ਹਮਨੇ ਉਸੀ ਹੋਸਪਿਟਲ ਮੈਂ ਉਸੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸੇ ਐਂਜੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਕੀ ਕਰਾਈ ਤੋ ਜੋ 95% ਵਾਲੀ ਜੋ ਹਮਾਰੀ ਬ੍ਰੋਕੇਜ ਥੀ ਵੋ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ ਔਰ ਜੋ 80% ਵਾਲੀ ਥੀ ਵੋ ਆਧੀ ਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੋ ਵੀ ਖੁੱਲ ਗਈ। ਮੇਰੇ ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਜੋ ਚੱਲਣੇ ਮੈਂ ਤਕਲੀਫ ਰਹਿਤੀ ਥੀ ਵੋ ਸਭ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਂ 4-5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਡੇਲੀ ਮੋਰਨਿੰਗ ਵਾਕ ਔਰ ਸ਼ਾਮ ਮੋਰਨਿੰਗ ਵਾਕ ਕਰਨੇ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਘਰ ਮੈਂ ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਮੇਰੇ ਜੋ ਵਿਆਪਾਰ ਨੇ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਕੇ ਕਾਰਨ ਸੇ ਜੋ ਤਕਲੀਫ ਆਈ ਥੀ ਵਿਆਪਾਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਥਾ ਵੋ ਵਿਆਪਾਰ ਵਾਪਸ ਉਸਸੇ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਦਾਦ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਚਲੂ ਹੋ ਗਿਆ।
ਜਬ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਪੀਟ ਐਂਜੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਤੋ ਉਸਨੇ ਉਸਕਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੇਖਣੇ ਕੋ ਮਿਲਾ ਕਿ ਜੋ ਮੇਰਾ 100% ਕਾ ਬਲੋਕ ਥਾ ਵੋ ਬਿਲਕੁਲ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਾਕੀ ਜੋ ਦੂਸਰੇ ਬਲੋਕ ਥੇ ਵੋ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਜੈਸੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਅਬ ਮੈਂ ਸਵਸਥ ਹੂੰ, ਮੁਝੇ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਰਾਮ ਸੇ ਚਲ ਫਿਰ ਸਕਤੀ ਹੂੰ, ਸਭ ਕੁਛ ਕਾਮ ਕਾਜ ਕਰ ਸਕਤੀ ਹੂੰ ਘਰ ਕਾ।
2 ਸਾਲ ਕੇ ਬਾਅਦ ਮੈਨੇ ਰਿਪੀਟ ਐਂਜੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਕਰਵਾਈ ਤੋ ਉਸਮੇ ਮੇਰਾ जो चारों ब्लॉकेज था, 2 नली में 4 ब्लॉकेज था, वो सब में रिडक्शन भी आ गया और मेरा जो इजेक्शन फ्रैक्शन 20 था वो 37 हो गया। ये ऐसा पहली बार हुआ उसी टाइम पे और इजेक्शन फ्रैक्शन आज मेरा 45 है। आज हम लोग बहुत खुशी में हैं और मेरे घर वाले भी बहुत खुशी में हैं और खुशी जैसे खुराक नहीं ऐसा हमको आज लगता है।
कैट प्रोग्राम था यहाँ पर गोबर हॉस्पिटल में फर्स्ट टाइम वहां पर, तो डॉक्टर साहब ने वहां अपना प्रोग्राम चल रहा था उसी में हमने आपसे रिक्वेस्ट करके परमिशन लिया तो कि 7 डेज था, 3 डेज ऑलरेडी हो चुका था तो वहां 4th रोज जब मैं 3 डेज में अंदर हूं काफी रिलीफ मिलने लगी वहां पर। और कुछ नहीं था, वो डॉक्टर साहब ने जैसे बताया कि मेडिटेशन, एरोबिक एक्सरसाइज, वेजिटेरियन डाइट यही है, और एक्चुअली हम इसको फॉलो कर रहे हैं बराबर, और उस समय हम 3-4 किलोमीटर घूमते हैं आराम, बिना घूमे रहा नहीं जाता है।
मेरे को ऐसा लगा ये केयर प्रोग्राम में कि मैंने मेरे जीवन में 55 साल तक जो मैंने जीवन बिताई वो ऐसा मेरे को एहसास हुआ कि यहां आने के बाद जो मेरा रहना बोलना सब बदल गया, मेरा जीवन बदल गया और मैं अच्छी तरह से ढंग से काम करता रहता हूं। सुबह 4 बजे से रात को 10 बजे तक मुझे ऐसा कोई थकावट की रुकावट भी नहीं आती है।
यहां आगे जब माइन्यूटली ऑब्जर्व किया, क्लासेस अटेंड की, तब पता चला कि हम तो बहुत से गलत नोशंस अपने दिमाग में पाले फिरते हैं, हमें बहुत से ऐसा लगता है कि हम ठीक हैं, लेकिन यहां आगे पता चला कि राइट वे क्या है, लाइफ को जीने का तरीका क्या है। यहां पर आकर मैंने राजयोग सीखा, मैंने रिपीटेड एंजियोग्राफी दोबारा से करवाई है जुलाई 2005 में, और मुझे सभी ब्लॉकेज में 25% का फायदा हो चुका है। वैसे चलने फिरने में, घूमने में, डेली एक्टिविटीज में मुझे किसी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं है, और पहले से मैं ज्यादा एक्टिव हूं, और मैं सभी भाई बहनों से जो मुझे सुन रहे हैं उनसे निवेदन करना चाहूंगा कि वो यदि स्वस्थ भी हैं तब भी किसी न किसी प्रकार से यहां संपर्क करके इस कार्यक्रम का फायदा जरूर उठाएं, राजयोगा पद्धति को अपने जीवन में जरूर।
जो मैंने यहाँ कैंप में एंट्री लिया आबू में, तो तब से मैं ये कैंप का एंट्री करता हूँ, और मैं 7 दिन का कैंप जो होता है वो मैं एंटरटेन करता था, और उसके बाद में तो मैं हर कैंप के अंदर मैं सेवा देता हूँ। आज मेरी कंडीशन बहुत बढ़िया है, इसी वजह से मैं सेवा देता हूँ।
जब से मैंने ये अटेंड किया और मैं यहाँ कैट, और कैट से मुझे काफी प्रभाव पड़ा, और काफी इसलिए मैं अब मैं चल फिर सकता हूँ।
जब से मैंने ये प्रोग्राम अटेंड किया है तो एक अंदर जो डर था वो सब डर पूरा निकल गया, और अब मैं एकदम फ्री हो गया हूँ। मुझे पहले जो तकलीफ होती थी एंजियोप्लास्टी करने के बाद भी, वो तकलीफ अब नहीं महसूस होती है, एकदम खुशी में रहता हूँ, और सब काम पहले जैसा है पूरे एफिशिएंसी करता हूँ।
उसके बाद हम यहाँ आए प्रोग्राम में, तो उसके बाद मेरे को मतलब यहाँ आके बहुत रिलीफ मिला। मेरी शुगर उस टाइम बहुत ज्यादा हो गई थी, लेकिन उसके बाद जो इनकी डाइट बताई हुई थी मैंने वो बिल्कुल वही फॉलो किया, तो वो मेरी मतलब शुगर बिल्कुल कंट्रोल है, और कोलेस्ट्रॉल भी मेरा काफी ज्यादा था उसमें भी बहुत फर्क पड़ा।
फिर यहाँ हमारे सेंटर की बहन के वजह से मैं बाबू आया, और डॉक्टर गुप्ता जी से मिलकर शिविर में एडमिट हुआ। अभी मैं तीसरे शिविर में आया हूँ, मैं बिल्कुल अच्छा हूँ, चल सकता हूँ और आनंद में हूँ। उसके बाद यहाँ का प्रोग्राम फॉलो करने के बाद धीरे 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 खान पान और बैटरी वगैरह सेव करने के मुझे काफी फर्क पड़ा, अब मैं पूरी तरह स्वस्थ हूँ। और यहाँ आते ही मुझे उस दिन जब उन्होंने सुबह करीब 6-10 बजे मैं पहुंच गया था, तो 10 से लेकर 5 बजे तक लगातार मैं 6 बजे उन्होंने मुझे काम कराया, तो एक बार तो मुझे मन में ये लगा कि मैं कैसे कर पाऊंगा। 6 बजे तक तो मैं परेशान रहा, लेकिन 6 बजे जब वॉकिंग की तो वॉकिंग करने के बाद रात को 8 बजे तो मैं एक तरह से भूल भी गया कि मैं वाकई को इतना बीमार हूं।
मैं सीएडी प्रोग्राम यहां आबू में आ गया, आबू में आकर डॉक्टर सतीश गुप्ता को अपना जो रिपोर्ट था दिखाया, जब फॉलो किया तो ऐसा महसूस हुआ जैसे हम पहली बार कुछ खुशी महसूस कर रहे हैं। ये राजयोग का जो प्रोग्राम हमने अटेंड किया, और इसी हिसाब से हमारा डायबिटीज भी गुम हो गया, हमारे 50% ब्लॉकेज थी वो भी गुम हो गई। आज मैं इतना फिट फील हूँ, इतना हेल्दी वेल्दी हूँ, इतना वर्क हार्ड वर्क मैं कर सकता हूँ जैसे मैं 35 साल का जवान हूँ।
केयर प्रोग्राम में आने के बाद मेरी जो प्रॉब्लम्स थी वो काफी हद तक अच्छी हो गई, और मैं मच फील बेटर कर रहा हूँ। अब मैं काफी अच्छा महसूस करता हूँ, और मुझे कोई भी तकलीफ दिक्कत लगती नहीं है, और पहले जो मेरे को हार्ट के बारे में फियर्स था वो एकदम दिल से निकल गया है, मन में कोई भी तरह का डर नहीं है। और आगे भी मैंने अभी तो मन से निकाल ही दिया है कि मैं हार्ट पेशेंट हूँ, और मेरे को बाईपास सर्जरी या कोई भी ऐसी सर्जरी करवानी नहीं है।
जब भूमा कुमारी के बारे में हमें पता हुआ तो मैं माता जी को लेकर सितंबर 2003 में डॉक्टर गुप्ता द्वारा सीएडी प्रोग्राम चलाए गए प्रोग्राम में इनको लेकर शरीक हुआ और यहां पर जो उन्होंने समझाया 100% फॉलो करने के बाद आज मैं ये पाता हूं कि इनकी मानसिक स्थिति पहले से बहुत अच्छी है, डर और भय कम हुआ है पहले से और सीढ़ी चढ़ने में इन्हें परेशानी नहीं होती है और 2-3 किलोमीटर प्रतिदिन ये वॉक बिना किसी परेशानी के कर सकती हैं। बल्कि मुझे तो ये कहते हुए बड़ी खुशी होती है कि इनके हृदय रोग की वजह से मुझे भी अपने जीवन में भी इतनी शांति और ये प्राप्त हुई है कि जो एक बुरे दौर से मैं गुजर रहा था, न केवल इनका हृदय रोग ठीक हुआ बल्कि मेरी मानसिक स्थिति भी बहुत अच्छी हुई है। ये एक विशेष अचीवमेंट इस प्रोग्राम की मैं बता सकता हूं।
6 महीने तो बहुत दूर है, इवन 7 दिन के बाद ही जब हमने इन लोगों की इन्वेस्टिगेशन की, इनकी खून का जांच किया, इनके हार्ट का जांच किया, इनके दिमाग का जांच किया और स्ट्रेस हार्मोन का जांच किया, 7 दिन में ही चेंजेस आने शुरू हो जाती है। हमारे पास ऐसे ऐसे पेशेंट्स थे जो जब स्टडी में ज्वाइन किया तो उनको 20 या 25 मीटर चलने की उनमें आपस में मानसिक ताकत नहीं थी, वो डरते थे इतना चलना भी। 7 दिन के बाद ये पेशेंट 1.5 या 2 किलोमीटर बगैर किसी प्रॉब्लम के चलते थे और 6 महीने के बाद तो कुछ पेशेंट इवन स्विमिंग तक करते हैं।
और जो रिजल्ट हमारे सामने आए अनबायस्ड बिना किसी भेदभाव के जो रिजल्ट हमारे सामने आए हैं उनसे ये पता लगता है कि पहली बात तो उनका वजन जो था लगभग एवरेज 5 किलो के आसपास कम हो गया, क्योंकि मोटापा एक बड़ा कारण है भारत में, पॉट बैली से कहते हैं, पीएस शेपेड ओबेसिटी कहते हैं, नाशपाती जैसा बीच का हिस्सा मोटा और ऊपर नीचे पतला, ये एक बड़ा कारण है हार्ट की बीमारी का, वो कम हो गया। दूसरा जो मुख्य कारण है बैड कोलेस्ट्रॉल और गुड कोलेस्ट्रॉल, टोटल कोलेस्ट्रॉल जो है लगभग 25% कम हो गया, बैड कोलेस्ट्रॉल 31% कम हो गया, गुड कोलेस्ट्रॉल 16% बढ़ गया और ट्राइग्लिसराइड जो है लगभग 31% कम हो गए और बैड से गुड कोलेस्ट्रॉल का रेशियो जो है वो 37% कम हो गया, जो रेशियो लगभग 5 के पास था वो 3 से भी कम हो गया। साथ साथ उनके जो स्ट्रेस हार्मोन्स थे वो कम हो गए, काफी अच्छी मात्रा में कम हो गए, चिंता वाले तनाव वाले हार्मोन्स और खुशी वाले हार्मोन बढ़ गए। ईजी में देखने में आया आश्चर्यक बात सामने ये आई कि आंख खोले भी उनका जो रिलैक्सेशन लेवल था वो काफी अच्छा पाया गया, लगभग 400% अल्फा रिदम में इंप्रूवमेंट पाई गई। और जो हमारे दो सिस्टम होते हैं, सिंपैथेटिक सिस्टम और पैरासिंपैथेटिक सिस्टम, ये देखने में आया कि हार्ट पेशेंट्स में सिंपैथेटिक सिस्टम ज्यादा प्रीडोमिनेंट होता है और ये देखने में आया कि जो और इसमें इस रिसर्च के बाद इसमें इस प्रोग्राम में आने के बाद ये पाया गया कि उनका जो सिंपैथेटिक और पैरासिंपैथेटिक सिस्टम दोनों का बैलेंस हो गया। तो ये राजयोग का मेडिटेशन का ऑब्जेक्टिव है, फायदा क्या होता है वो हमें देखने को मिला। इसके अलावा उनकी जो एक्सरसाइज की कैपेसिटी थी, व्यायाम करने की कैपेसिटी थी, जो लोग 500 मीटर भी चल नहीं पाते थे और उनको बहुत सारी दवाइयां खानी पड़ती थी, उनका अब चलने का 4 किलोमीटर एवरेज हर आदमी आराम से चल पाता है। उनका दवाइयां जो एंगाइना की दवाइयां यूज करते थे वो काफी मात्रा में कम हो गई, लगभग 80% कम हो गई। उनका जो एक्सरसाइज करने का और जो उनका जो था जो क्लास के पेशेंट, मतलब होता है जो बेड रिडन ऑलमोस्ट घर घर में चल के भी तकलीफ हो जाती है, ऐसे पेशेंट ऐसे बन गए जो कि बाहर खुले जा सकते, कहीं भी जा सकते हैं, ड्राइव कर सकते हैं, गेम्स खेल सकते हैं, ऐसे पेशेंट्स बन गए, ऐसे दिलवाले बन गए।
जब हमने इनका साइकोलॉजिकल प्रोफाइल देखा 6 महीने के बाद, इनका एंगर स्केल मतलब गुस्सा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर पाया गया जो हार्ट डिजीज पैदा कर सकता है या हार्ट अटैक कर सकता है, गुस्सा, डिप्रेशन, एंजाइटी सभी इन सभी पेशेंट्स में कम हो गए और इनकी सेंस ऑफ वेलबींग बहुत अच्छी होगी, पहले से बहुत इंप्रूवमेंट होगी, इनके स्ट्रेस हार्मोन सभी के कम हो गए सभी पेशेंट्स के और ब्रेन से जो हैप्पी हार्मोन्स थे वो निकलने शुरू हो गए सभी पेशेंट्स।
जब मैं प्रोग्राम अटेंड करने के लिए आया था तो मैंने देखा कि बहुत सारे मरीज जो कि दिल वाले जिनको हम कहते हैं यहाँ पे, जो शुरुआत में एक कदम भी नहीं चल पाते थे या इस ग्राउंड के चारों तरफ चलने में उनको थोड़ी दिक्कत होती थी, प्रोग्राम के समाप्त होते होते वो इतना अच्छा महसूस कर रहे थे कि वो 8-10-15 चक्कर आधे आधे घंटे इस ग्राउंड के अंदर चलने को तैयार थे, और साथ ही साथ वो इतने खुश थे, उनके अंदर से उनकी ये फीलिंग खत्म हो चुकी थी कि वो एक हार्ट पेशेंट है। और जाने के बाद उन्होंने, जिन लोगों ने प्रोग्राम्स को मंथ्स और ईयर्स तक फॉलो किया है, उनको भी हम लोगों ने ऑब्जर्व किया कि देखा कि उनमें सिम्टम्स उनके काफी इम्प्रूव हो गए, दवाइयां बहुत कम से कम उनको लेनी पड़ रही है। साथ ही कुछ लोगों की एंजियोग्राफी जो पहले हुई थी और जो फिर बाद में हुई, उनको देखा गया कि उनको एंजियोग्राफी में ब्लॉकेज में भी काफी इम्प्रूवमेंट पाया गया। तो कुल मिला के मैं ये कहता हूं कि इस लाइफस्टाइल प्रोग्राम से जो हार्ट के पेशेंट्स हैं, जिन लोगों की बहुत सारे लोग जिनके की एंजियोप्लास्टी और बाईपास सर्जरी भी हो चुकी है, न केवल वही बेनिफिट हुए बल्कि और बहुत सारे पेशेंट जिनको कि अभी हार्ट की बीमारी आने वाली है, उनको बहुत सारे से रिस्क फैक्टर है, उनको भी बहुत बेनिफिट देखने को मिला।
तो ये जो हमारी फैमिली में टेंडेंसी है कि बच्चे को प्यार दिखाना है खाने के जरिए, वो एक्चुअली उसको पॉइजन देना है कि आप उसको कहीं यहां बेटा खा लो, ये भी खा लो, जंक फूड भी खा लो, घी पियो, ये करो वो करो, उससे क्या है कि वो जो फैटी सेल्स बन जाते हैं बॉडी के अंदर, जो जिसको हम सेहत कहते हैं, वो सारी जिंदगी उसको परेशान करेगा, क्योंकि वो जो सेल्स है वो जाते नहीं है एक बार पैदा हो गए तो। तो एक तो हमने अपने जो पेरेंट्स की गलती से बच्चों को ये कष्ट दी गई, उसके बाद ये है कि जो सेकेंड डेकेड में आए होते हैं 10 से 20 साल की, स्कूल जाते हैं जब उनको स्पोर्ट्स खेलनी चाहिए सारा टाइम अपनी स्टडीज के साथ साथ, वो कई स्कूलों में आजकल है कि कॉम्पिटिशन की वजह से कि कई लोग स्पोर्ट्स में इंडल्ज ही नहीं करते, और आई थिंक वो बहुत अनहेल्थी चीज है, बिकॉज पढ़ने से ही नहीं ह्यूमन बींग बनता है, पढ़ने से ही नहीं लीडर बनता। इसीलिए ये बहुत जरूरी है कि वेल राउंडेड एक्सरसाइज भी होनी चाहिए।
जब आप ये चेंज करते हैं, जेनेटिक आप छोड़ दीजिए, उसके लिए आपके हाथ में नहीं है या आपके पास चॉइस नहीं है कि आपके पेरेंट्स कौन थे, बट आपकी डाइटरी हैबिट चेंज हो सकती है। वहां पर आप हल्का खाना लेंगे जिसमें फैट नहीं हो ज्यादा है, जिसके अंदर कार्बोहाइड्रेट ज्यादा नहीं हो, अपनी एक्टिविटी बढ़ाएंगे, फिजिकल एक्टिविटी जैसे होता है रेगुलर, जैसे अब्रॉड में होता है रेगुलरली आप घूमने के लिए जाएंगे, एक्सरसाइज करेंगे, कुछ गेम एंड स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करेंगे और तनाव मुक्त रहेंगे, तो ये आपके लिए ही अच्छा है सेहत के लिए।
मैं इस प्रोजेक्ट से बहुत पर्सनल रूप में जुटा हुआ हूं। मैं जहां काम करता हूं मुंबई में जेवीए हॉस्पिटल में, वहां इन मरीजों का एंजियोग्राफी प्रोजेक्ट शुरू होने के पहले किया गया और बाद में किया गया, और मैंने ऐसा देखा कि काफी लोगों में एंजियोग्राफी में जो हार्ट की आर्टरी जो सिकुड़ी हुई थी, उनका जो सिकुड़करण था वो 90% से घट के 60% हो गया, किसी का 70% से घट के इवन 30% हो गया, और सबसे ज्यादा कि केवल आर्टरी में बदलाव नहीं आया, पेशेंट में बदलाव आ गया, उनकी जो तकलीफें थी, उनको जो एंजाइना होता था आधे किलोमीटर चलने पर, चौथाई किलोमीटर चलने पर, अब वो जो है सो 2 किलोमीटर और 3 किलोमीटर चल पाते हैं।
अब तो इसकी एक्सेप्टेंस बहुत बढ़ गई है, और फिर साथ साथ जैसे जैसे रिसर्च की फाइंडिंग्स हमारे पास अवेलेबल हुई, ईजी के रिजल्ट्स और एंजियोग्राम जो रिपीट किए उनके जो रिजल्ट्स सामने आए, उससे हमारी भी हिम्मत बढ़ी और पेशेंट्स को भी लगा कि नाउ इट इज समथिंग, एक ऐसी चीज है जिसको कोई भी रिफ्यूट नहीं कर सकता।
This will be the cheapest intervention. Most of the studies I know in the Western world have always used lipid-lowering drugs. They have used exercise and others, but it has also used lipid-lowering drugs in a lot of other intervention. This was most impressive, about reaching about 20%, 30% reduction in the block and the other parameters. This will be one of the most cost-effective.
इन्होंने अपनी रिसर्च के द्वारा जो अनेक भाई बहनों को गाइड किया है, उसमें बहुत एक सुंदर बैलेंस्ड दिनचर्या, बैलेंस्ड डाइट और उसके साथ साथ मेडिटेशन, जिसको राजयोग मेडिटेशन हम लोग नाम देते हैं, जिसमें सारा कनेक्शन थॉट प्रोसेस का है। ये जो कैंड का प्रोग्राम है, इसके द्वारा जो सदर गाइडेंस मिलती है, इससे अनेक भाई बहनों को लाभ मिला है। और हम चाहते हैं कि भारतवासी खासकर हर एक इसको अपना ले, तो सब भारतवासी सदा स्वस्थ रहें, सदा सुंदर जीवन रहे और घर घर स्वर्ग बने, तो भारत पुनः स्वर्ग बन जाए।
जिसको हार्ट की प्रॉब्लम है उसको आध्यात्मिकता की शक्ति की भी आवश्यकता है, जिससे जीवन के अंदर उनके दिनचर्या सेट रहती है, मानसिक संतुलन ठीक रहता है, शारीरिक व्याधियों से निजात पाता है। तो हर प्रकार से आप देखेंगे कि मनुष्य का जीवन मन भी स्वस्थ, तन भी स्वस्थ, विचार भी स्वस्थ और जिनको अपने साथ में रखता है वो भी स्वस्थ रहते हैं। तो इसलिए ये एक जरूरी हो जाता है कि मनुष्य के जीवन में आध्यात्मिकता हो। आध्यात्मिकता कोई धर्म नहीं है, ये जीवन जीने की एक शैली है और जिस शैली के आधार पर हम अपने जीवन को व्यवस्थित सुखदायी बना सकते हैं, जिसमें हमारे दिन की दिनचर्या, हमारे विचार, हमारा संग, हमारा आहार, हमारा व्यवहार, ये सब इसके अंतर्गत आते हैं और ये सब दिल की बीमारियों को दूर रखने में एक मददगार सिद्ध होता है।
मन में जो बुरे ख्याल हैं वो दिल को असर करते हैं, नेगेटिव वेस्ट। तो नेगेटिव तो एकदम दिल की क्या हालत करेंगे, और वेस्ट मेरा अनुभव है कमजोर कर देते हैं। वेस्ट ख्यालात दिमाग को शांत नहीं है तो दिल बेचारी को दर्द पड़ता है। दिल बड़ी नाजुक है, सेंसिटिव नेचर वालों को दिल में दर्द जल्दी पड़ता है। इसलिए बाबा कहते हैं सेंसिबल बनो, समझदार बनो, सियाने बनो।
मेरे दिमाग ठीक है तो मानो सब कुछ ठीक है, इसलिए ये दिल दिमाग को जो सदा ठीक रखते और उसके लिए जो ये आप लोग का हार्ट के लिए एक्सरसाइज रहती है ये बहुत अच्छी सहज और बहुत हार्ट के लिए एकमात्र दवा है।
और मुझे आशा है कि ये मैसेज सारे वर्ल्ड में एज ए प्रिकॉशन सभी मानवता को मिल जाती है तो ये बहुत अच्छा हो सकता है। तो इसका एकमात्र उपाय है जिन्होंने ये लाभ प्राप्त किए हैं तो उनका अनुभव ब्रॉडकास्ट करते हैं, मीडिया में देते हैं या एक से एक को ये संदेश पहुंचाते हैं तो ये बहुत लाभदायक हो सकता है। परंतु जो हेल्थ के लिए अधिकारी है, अधिकारीगण है, ये जवाबदार है, सरकार है, तो इस प्रोग्राम को बहुत रुचि से लेकर के ये प्रचार करते हैं तो ये बहुत लोगों का जान भी बच जाएगा और देश का संपत्ति भी बच जाएगी। और जो अच्छे अच्छे जो लोग इस देश के उन्नति में भागीदार है तो वो लोग भी देश का और अधिक सेवा कर सकेंगे।
अम्मी जी, बहुत ही उम्मीद है कि आने वाली जनरेशन में जब आप इंक्रीज ऑफ फिजिकल एक्टिविटी होगी, डाइट का बच्चों को समझ में आना शुरू होगा, एडल्ट को समझ में आना शुरू होगा, तो कंडीशन ज्यादा बेटर होगी। और डेफिनेटली डीआरडीओ काम जो हो रहा है बहुत ही बढ़िया काम है एंड साइंटिफिकली प्रूव्ड काम है जो हमने इम्प्लीमेंट किया है और आगे भी जो आप करेंगे इम्प्लीमेंट करते हैं।
इन रिजल्ट को देखते हुए जो बेनिफिशियरी थे उन्हें ये महसूस किया कि ये प्रोजेक्ट बड़ी आसानी से सारी जनता तक फैलाया जा सकता है क्योंकि इसमें कोई कास्ट इन्वॉल्व नहीं थी और बड़ा सिंपल प्रोग्राम है जिसमें हम लो फैट हाई फाइबर डाइट का इस्तेमाल करते हैं, वेजिटेरियन डाइट, एरोबिक एक्सरसाइज का योग करते हैं और राज योग का मेडिटेशन करते हैं, तो इसमें कोई कास्ट इन्वॉल्व नहीं है और ये परमानेंट इलाज है और इसे लाइफस्टाइल भी चेंज होता है। तो इसको ध्यान में रखते हुए और इस प्रोग्राम को आगे दुनिया तक पहुंचाने के लिए हमने एक फाउंडेशन बनाया जिसका नाम है हेल्दी हार्ट एजुकेशन एंड रिसर्च फाउंडेशन। अब इस प्रोग्राम के तहत तीन किस्म के प्रोग्राम हम लोगों ने सोचे हैं। एक है प्रिवेंटिव प्रोग्राम, जिसमें हम जिन लोगों के हाई रिस्क फैक्टर्स हैं, जैसे डायबिटिक है, ब्लड प्रेशर है, मोटापा है, जिनको हार्ट अटैक होने की ज्यादा संभावना है, उनको एक्सपोज करेंगे, अवेयर करेंगे कि देखिए ऐसा अडॉप्ट करने से आप हार्ट अटैक से बच सकते हैं। और दूसरे हमारे प्रोग्राम है जिसको हम होलिस्टिक हीलिंग बोलते हैं, जिससे कि अपना हार्ट की अपनी स्थिति को आप सुधार सकते हैं। और तीसरे हमारे प्रोग्राम है जिन लोगों ने बाईपास करवा लिया है या एंजियोप्लास्टी करा ली है, आगे कॉम्प्लिकेशन ना आए और अपने स्वास्थ्य को वो ठीक रख सकें और अपने जीवन शैली अच्छी रख सकें, उसके लिए प्रोग्राम है।
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस बारे बहुत चिंतित है कि हार्ट डिजीज का नंबर बढ़ रहा है और उसका प्रकोप बढ़ रहा है, तो एक जातीय स्तर में हार्ट फाउंडेशन बना के कॉस्ट इफेक्टिव कैसे होगा, जो आम जनता जिसको इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि उनको ये एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट ऑफ वेरी मार्जिनल बेनिफिट जो बाईपास वगैरह होता है उसमें से काफी परसेंटेज बहुत एक्सपेंसिव है और काफी का बेनिफिट भी लॉन्ग टर्म नहीं है, तो मैं डॉक्टर गुप्ता के साथ बात करने का देखने का सौभाग्य मिला था। मुझे लग रहा है उसमें बहुत सारे गुण हैं। हम लोग एक नेशनल कंसल्टेशन प्रोसेस करेंगे जहां सारे विशारद लोग आएंगे, स्पेशलिस्ट, और फिर उनसे बात करेंगे, डॉक्टर गुप्ता से भी बात करेंगे। आप जानते हैं डॉक्टर्स डिफर, तो बिठा के उनको एक कंसेंसस बिल्डअप करेंगे। मुझे लेकिन पर्सनल लग रहा है डॉक्टर गुप्ता जो काम किए हैं वो सही है और उसको बड़ा सीरियसली हम लोग देखेंगे। अब गवर्नमेंट इस पॉलिसी को बढ़ोतरी देने में तुला हुआ है, इस साल के आखिर तक हम लोग कुछ सिद्धांत में पहुंच जाएंगे। हालांकि मैं ये कहता हूं कि मेरा कोई रिलीजियस बिलीफ नहीं है, मैं कोई सेक्ट का एडवोकेसी नहीं कर रहा हूं, लेकिन डॉक्टर गुप्ता और आपके ब्रह्म कुमारी लोगों का जो राजयोग है उसका बेनिफिट तो मैंने देखा।
ये कार्य बहुत सराहनीय है। विश्व की आत्माओं, शरीरों और दिलों को सर्वांगीण रूप से बदलने की इच्छा मनों में है। वैज्ञानिक शोध के सकारात्मक नतीजे हमारे सामने हैं, परंतु क्या ये काफी होगा? ये कार्य तभी पूरा हो सकता है जब हर व्यक्ति इसमें सम्मिलित हो। इस प्रयास में हर किसी की आज से ही निश्चय बुद्धि बन बदलाव लाने की जरूरत है, क्योंकि हम अपने जीवन शैली में किस प्रकार का और कितना परिवर्तन लाते हैं इससे ही यह निर्भर होगा कि हमारा कल कितना सुनहरा होगा और हम कितने स्वस्थ हैं, क्योंकि स्वस्थ दिल हमारे अपने हाथ में है।
सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे शस्त्राणि पशुभ्यः, मा कश्चित् रोगः भवेत्। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।